पृष्ठ संख्या 458, अध्याय 18, मादक द्रव्यों के व्यसनियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। मादक द्रव्य या ड्रग का शाब्दिक अर्थ है कोई सूखी बूटी, और या फ्रेंच भाषा में ड्रग शब्द से लिया गया है। इस मादक द्रव्य शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग किसी बीमारी को ठीक करने, परीक्षण करने, रोकने या राहत पाने के लिए किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुसार मादक द्रव्य एक ऐसा पदार्थ या उत्पादन है जिसका उपयोग इसे ग्रहण करने वाले के भले के लिए शरीर विज्ञान संबंधी पद्धतियों या मनोरोग संबंधी स्थितियों को सुधारने या उनका अन्वेक्षण करने के लिए किया जाता है, या ऐसा करने का इरादा किया जाता है। मादक द्रव्य का सेवन अब औषध के रूप में ना करके अन्य कारणों में किया जाता है, और जब इसकी मात्रा, शक्ति और आवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब यह मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कार्यशीलता का हनन करता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला मनुष्य औषध के रूप में न लेकर इसका इस हद तक आदि हो जाता है कि वह इसे न लेने की स्थिति में शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करता है। मादक द्रव्य या नशीले पदार्थ का आदि होने को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि यह पांच नशीले पदार्थों में से एक या पांच पदार्थों का अनिवार्य प्रयोग है। ये पदार्थ हैं कैनेबीज, हेलियोसिगोमस, उत्तेजक, सिडेटिव्स और साल्वेंट्स। कोई व्यक्ति इनमें से जिस नशीले पदार्थ का सेवन करता है उस पर फिर वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतया निर्भर हो जाता है। मादक द्रव्यों के सेवन का व्यसन तथा उनके व्यापार में सहयोग प्रदान करने वाले तत्व या कारण, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी कई कारण हैं जो मनुष्य को उन दवाइयों का आदि बना देने के लिए उत्तरदायी है। उनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण ये हैं, बहुत से नशीले पदार्थों का शिकार होने वाले व्यक्ति आरंभ में इसका प्रयोग जिज्ञासावश या किसी आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रायः इनमें वे अपने मित्रों या किसी वर्ग विशेष से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग नशीले पदार्थों का सेवन अपनी सुस्ती, उदासीनता या थकान पर काबू पाने के लिए करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति इसे इष्टजनों से प्रेम या समझ बूझ ना पा सकने के कारण इन नशीले पदार्थों का आदि हो जाता है। नशीले पदार्थों के आदि बहुत से मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की निराशाओं के शिकार होते हैं। इन निराशाओं के कारण गरीबी, बेरोजगारी, उचित आशाओं और आकांक्षाओं की अनापूर्ति, सामाजिक अन्याय, असमानता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात आदि हैं जो समाज की जड़ों में व्याप्त हैं। आदमी की योग्यता की कोई कद्र नहीं होती, जिससे वह निराशा का शिकार हो जाता है, और अंत में पारिवारिक कलह क्लेश, माता पिता से अच्छे संबंधों का न होना, ये कारण भी व्यक्ति को नशा सेवन के लिए मजबूर कर देते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन में इतनी वृद्धि का कारण यह भी है कि ये पदार्थ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 459, नशीले पदार्थों का व्यापार। देश के भीतर या देश के बाहर ये नशीले पदार्थों की तस्करी करने, इन्हें अवैध रूप से बेचने की प्रक्रिया को ड्रग ट्रैफिकिंग कहते हैं। यह शीघ्र पैसा बनाने वाला व्यापार है। अरबों डॉलर का राजस्व इससे जुड़ा है। इन अवैध नशीले पदार्थों को पकड़े जाने से तस्करता विरोधी विभाग को करोड़ों रुपयों का लाभ होता है। इसलिए इनमें आश्चर्य नहीं है कि अनेक बड़े बड़े तस्कर अंदर ही अंदर इन व्यापार में लगे हुए हैं, तथा वे उन खतरों की परवाह नहीं करते जो नशीले पदार्थों के पकड़े लिए जाने पर दंड या कभी कभी मृत्युदंड के रूप में हो सकते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन और उनके व्यापार में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थों का सेवन और उनका व्यापार, परस्पर संबंध समस्याएं हैं, उनमें कारण कार्यभाव संबंध हैं। नशीले पदार्थों का व्यापारी अपनी आजीविका के कारण नशीले पदार्थों का सेवन करने में लग जाता है, जबकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला अपनी आदत को बनाए रखने के लिए पैसा पाने की वित्तीय आवश्यकता से बाधित होकर इन पदार्थों का व्यापारी बन जाता है। नशा करने वालों के जब वित्तीय स्रोत बंद हो जाते हैं तो उसे अपनी नशाखोरी को आश्रय देने के लिए नशीले पदार्थों के व्यापार पर निर्भर होना पड़ता है। अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि नशाखोरी ने और बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। अपराध विषयक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का नशाखोरी निश्चित रूप से अपराधों की घटनाओं की वृद्धि में सहायता देती है। जबकि एक नशाखोर पुरुष ठगी आदि करने लगता है, एक नशाखोर स्त्री वेश्यावृत्ति अपना लेती है। इन अपराधों का आधार आर्थिकता और नशाखोरी है। नशाखोरी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन। एक व्यक्ति जो नशाखोरी करता है तथा जो इसका शिकार होकर कष्ट में है, उसके आचरण तथा व्यवहार में शारीरिक और मानसिक तौर पर ऐसे लक्षण मिल जाते हैं जो हमारी इस बात में सहायता करते हैं कि हम यह आचरण बनाएं और इसे निश्चित करें कि वह इस बुरी लत का शिकार है और फिर उसके उपचार के लिए आवश्यक पग उठाए जा सकते हैं। ये लक्षण हैं: खेलों तथा दैनिक दिनचर्या में रुचि न लेना, भूख न लगना और भार कम होना, डगमग चाल, भद्दा गमन, कांपना, आँखों का लाल होना तथा सूजना ठीक से दिखाई न पड़ना, भाषण का दूषित होना, शरीर पर ताजे अनेक टीकों का दिखना, कपड़ों पर खून के धब्बे होना, घर में सुइयों सिरिंजों अथवा अजीब दोस्तों का पाया जाना, जी मचलाना, उल्टी आना और शरीर में दर्द होना, तंद्रा या निद्रा का आना, थकावट और निष्क्रियता आना, अत्यंत चिंता, खिन्नता और बहुत पसीना आना, मनोभावों का बदलाव, अचानक क्रोध, विवादग्रस्तता तथा भावुकतापूर्ण निःस्पृष्टता, स्मृति और मन के केंद्रित होने में खराबी, आत्महत्या की ओर उन्मुख होना, विशेष तौर पर स्नान गृह में ज़्यादा देर तक रहना, घर की वस्तुओं और पैसे आदि का घर से गायब होना। पृष्ठ संख्या 460। नशीले पदार्थों का कुसेवन और उनकी तस्करी विश्वव्यापक है। ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग अ ग्लोबल फिनोमिना। नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी की समस्या ने इन विगत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया है और कोई भी राष्ट्र इस विभीषिका से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संघ के द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार 7,50,000 हशिश के आदि थे, 48,00,000 कोनीन का सेवन करते थे, 17,60,000 लोग अफीम के शिकार थे, 23,00,000 लोग एम्फेटाइन्स के आदि थे और 34,00,000 लोग बारबिटेट्स, सेडेटिव्स और ट्रैंकुलाइजर्स के आदि थे। पिछले 3 वर्षों में आंकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विश्व में नशीले पदार्थों का व्यापार अब $300 बिलियन प्रतिवर्ष हो रहा है। पक्के अपराधियों की शाखाओं के पास एक संयुक्त नेतृत्व के अधीन मृत्यु और विनाश तक किसी को भी पहुंचने की क्षमता है। अब वे गुप्त रूप से प्रहार करने या युद्ध का आह्वान करने वालों पर आश्रित नहीं है। उत्पादन और शोध की स्थितियों से निकलकर ये नशीले पदार्थ लगातार और तेजी से अपने पूर्व निश्चित ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। नशीले पदार्थों के बढ़ते हुए सेवन ने आतंकवाद, अवैध शस्त्रों से व्यापार आदि को बढ़ावा दिया है, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान तथा पनामा जैसे देशों में अस्थिरता बढ़ रही है। नशीले पदार्थों के व्यापारियों ने इतनी वित्तीय और राजनीतिक शक्तियां धारण कर ली हैं कि विगत वर्षों में इनके कारण प्रशासनिक प्रणालियां परिवर्तित हो गई हैं और कुछ चुनावकर्ताओं ने इसे चुनाव का एक विशेष मुद्दा बना लिया है। श्री जॉर्गन गैमलगॉर्ड ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च परामर्शदाता रहे हैं और जो आजकल नशाखोरी नियंत्रण के लिए विश्व संस्था द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का निर्देशन कर रहे हैं, के अनुसार केंद्रीकृत भूमिगत नशाखोरी का नेतृत्व इतनी शक्तियां रखता है कि वह बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से लेकर छोटे छोटे व्यापारियों को अपने प्रभाव में ले रहा है। इस विकट स्थिति में सरकार तथा कानून लागू करने वाले आदरों की प्रभावशीलता बहुत सीमा तक समाप्त हो गई है। इस विभीषिका पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता, नशीली दवाओं तथा साइकोट्रॉफिक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, यूनाइटेड नेशंस कंसर्न अबाउट द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, पिछले दशक में नशीले पदार्थों का सेवन और व्यापार विशाल मात्रा में बढ़ा है। नशीले पदार्थों के व्यापार की नवीनतम लहर ने संसार में सबसे ज़्यादा व्यापक विपता ला खड़ी है की है, जो 1960 और 1970 के बीच में भी इतनी गंभीर नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के स्वर्णिम अर्धचंद्र, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है, ने हशिश के व्यापार में तुर्किस्तान और मेक्सिको को भी मात कर दिया है। इसी तरह बर्मा, थाईलैंड और लाओस की स्वर्णिम त्रिकोण अफीम की सबसे बड़ी उत्पादक है। इस शताब्दी में 8वें दशक ने अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और तीसरी दुनिया के देशों को अवैध नशीले व्यापार की वस्तुओं में आगे पाया गया। आज जबकि अनेक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आसानी से सुलभ हो जाने वाली नशीली वस्तुओं और साइकोट्रॉपिक औषधियों से बुरी तरह प्रभावित होकर कमजोर पड़ रहा है, इसकी रोकथाम का बस एक ही स्रोत संभव है, वह है विश्वजनित संयुक्त प्रयासों के द्वारा पीड़ा देने वाले इन उग्र साधनों का सफाया। अवश्य ही इस बात की जरूरत है कि इस विभीषिका के विरुद्ध युद्ध स्तर तक कार्य होना चाहिए और प्रत्येक विचारशील मनुष्य इसे नष्ट करने में सहयोग दें, चाहे वह बालक हो या धूम्रपान आदि करने वाला, या मनोरंजन के लिए इन घातक दवाइयों का आदि कोई अन्य व्यक्ति हो। धनाढ्यता के घिनौने जुए ने तेल व्यापार को पिछाड़ दिया है और अब यह शस्त्रास्त्र उद्योगों की ओर बढ़ रहा है। इसके भौतिक समाधान की जरूरत है, तदर्थ एक सर्वांगीण दृष्टि अपेक्षित है, जिस पद्धति से सभी जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान सकारात्मक जीवन और विचारों की पूर्णता में निहित हो जाता है। इस समय विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना एक आवश्यक कार्य हो गया है। पृष्ठ संख्या 461। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण तब से विश्वव्यापी चिंता का विषय बना हुआ है, जब 1909 में संघाई के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय महासभा आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पद्धति का विकास एक क्रमिक रूप से हुआ है, जो 1920 में लीग ऑफ नेशंस से आरंभ होकर 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पुनः संचारित हुआ है। अनेक संधियों की श्रृंखलाओं के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नशीले तथा मादक पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण से संबंधित अनेक कार्यों और शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ की अन्य सरकारों या देशों से यह अपेक्षा है कि वह नशीले पदार्थों के उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण रखें, अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाएं, उचित प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखें तथा अपने द्वारा उठाए गए पगों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संघों को सूचित करें। संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा जो नशीले पदार्थों के साथ संबंध रखती है का नाम नशीले पदार्थों का समिति है, जो आर्थिक और सामाजिक काउंसिल की कार्यात्मक समिति है। यह समिति नियमित रूप से नशीले पदार्थों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करती है। यह समिति अनेक संधियों के क्रियान्वयन, नशीले पदार्थों के प्रयोग द्वारा व्यापार से संबंध प्रश्नों और नशीले द्रव्यों के नियंत्रण पर तकनीकी सहयोग पर विचार करती है। समिति की एक 9 वर्षीय योजना नशीले पदार्थों से संबंधित एक उप समिति का गठन करना था, जिसे 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृति दे दी। इस उप समिति ने पुरानी 8 संधियों को बदलकर उनके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण मशीनरी को सरल और विकसित किया। यह कन्वेक्शन या उप समिति 1964 में सत्ता में आई। इसने सिंथेटिक नशीली दवाइयों और क्लासिकल नशीली दवाइयों जैसे अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन, कैनेबिस को अपने घेरे या दायरे में लिया। 1960 से लेकर आगे तक उन नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर अत्यधिक चिंता व्यक्त की जाने लगी जो पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में नहीं आते थे और हेल्यूसिनोगन्स दृष्टांत के रूप में LDS विषादक तथा उत्तेजक, बारबिटूरेट्स और एम्फेटेमाइज्ब। पुनः इस नशीली दवाइयों पर समिति ने इन संघों को सम्मिलित करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ की 1971 में हुई महासभा ने साइकोट्रॉपिक पदार्थों की उप समिति ने स्वीकार कर लिया। पृष्ठ संख्या 462। अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी नियंत्रण मंडल एक संघ की प्रशाखा जो आर्थिक एवं सामाजिक समिति द्वारा चुने हुए विशेषज्ञों से समन्वित है। यह मंडल सरकार द्वारा की गई सभी संधियों का परीक्षण करता है। संधियों के टूटने के प्रकरणों में इसे सरकारों से आवश्यक सुधार संबंधी कदम उठाने के लिए निर्देश देने का अधिकार है तथा संधि विच्छेद की स्थिति में राष्ट्रों की सरकारों से सुधारात्मक पग उठाने को कहे। यह चाहे तो एक देश से दूसरे देश तक अवैध नशीली वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दे तथा अवैध नशीली वस्तुओं के लदे जहाज़ों को बंदरगाह से जाने या यहाँ पर आने पर रोक लगा दे। नियंत्रण मंडल की भूमिका को शक्तिशाली बनाने के लिए 1972 में जेनेवा में हुई प्रसभा में एकल सभा में सुधारों का प्रावधान किया गया। नशीले पदार्थों से संबंधित समिति के द्वारा अनुमोदन का अनुसरण करते हुए और आर्थिक या सामाजिक कौंसिल तथा जनरल असेंबली के द्वारा मान लिए जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सचिव ने मार्च 1971 में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए एक संयुक्त राष्ट्र कोष स्थापित किया। सरकारी तथा निजी वर्गों से स्वेच्छा से प्राप्त धन से युक्त यह कोष उन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं की वित्तीय सहायता देने का एक विशेष स्रोत है जिनका उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण के तरीकों को शक्तिशाली बनाना है, नशीले पदार्थों की रोकथाम करना है, नशीले पदार्थों और नशाखोरों की चिकित्सा और उनका पूर्ण निवास करना तथा इन पदार्थों के अवैध उत्पादन तथा शोध को रोकना है। संयुक्त राष्ट्र नशीले पदार्थों की विभीषिका और उनके अवैध व्यापार से अत्यंत चिंतित है। 1987 के अपने विशेष अधिवेशन में 159 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में यह निश्चय किया गया कि नशीले पदार्थों के उत्पादन, प्रयोग और उनके तस्करी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए, साथ ही उनमें नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और व्यापार की बढ़ती हुई विभीषिका के नियंत्रण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 1991 से 2000 के दशक को मादक पदार्थों के विरुद्ध दशक घोषित किया है। इस दृष्टव्य में वे अंतर्राष्ट्रीय, खंडीय और राष्ट्रीय प्रयत्नों को तेज करने और बनाए रखने की योजना रखते हैं। सभी देशों ने वर्ष 1989 को नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान का निश्चय किया था। 26 जून को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। नशीले पदार्थों के साथ साथ इसमें साइकोट्रॉपिक पदार्थ भी शामिल हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस ट्रॉपिक पदार्थ भी शामिल है। प्रतिवर्ष इन दिवस को मनाने से विश्व की समस्त जनता, इसमें भारत भी शामिल है, को नशाखोरी के कुप्रभावों से अवगत कराया जाए, जिससे नशीले पदार्थों के सेवन के कुप्रभावों का पता चलेगा और उससे अनेक लोग इस नशाखोरी के विरुद्ध सहायक के रूप में उठ खड़े होंगे, ताकि इस आपदा से छुटकारा मिले, क्योंकि यह आपदा प्रत्येक समाज की स्थिरता, वृद्धि और उसके विकास को चुनौती है। पृष्ठ संख्या 463। भारत में नशाखोरी, ड्रग अब्यूज इन इंडिया। हमारे देश के लोग हमारे इतिहास के एक विशाल खंड में इन मुख्य मादक द्रव्यों के सेवन पर आश्रित रहे हैं। कैनबिस, अफीम, कोकीन और अल्कोहल। बहुत से हिंदू संत कैनबिस लेते थे, क्योंकि यह उन्हें ध्यान मुद्रा के समय भूख और प्यास पर नियंत्रण पाने में सहयोग देती थी। कुछ हिंदू मंदिरों में यह अब भी तरल पदार्थ के रूप में दी जाती है। अफीम खाना सामाजिक समूहों में एक वर्गगत कार्य माना जाता था। यह अफीम बच्चे को भी दी जाती थी, ताकि वह सो जाए और अपनी माँ अपने दैनिक काम धंधे की ओर ध्यान दे सके। जो कठोर शारीरिक श्रम करते हैं, विशेष रूप से फसल की कटाई के समय, वे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े लोग भी प्रयोग करते हैं। इससे वे अधिक परिश्रम करने में सक्षम होते हैं। समाज में श्रमिकों के द्वारा पान के पत्तों के साथ कोकीन का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या अधिक न होने के कारण यह अधिक बड़ी समस्या पैदा नहीं करता। अल्कोहल सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पदार्थ है, और इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण आने वाली समृद्धि के फलस्वरूप बढ़ा है, तथा शहरों में इसका प्रयोग पारिवारिक और सामाजिक समूहों से बढ़ा है। इसका अनुमान मदिरा पर लगे और देश में बढ़े हुए शराब के ठेकों से लगाया जा सकता है। चाहे हमारे संविधान में मद्यपान निषेध की नीति अस्पष्ट तौर पर है, इस मद्यपान निषेधादि के लागू करने के कारण प्राप्त होने वाले राजस्व के अन्य पर्याप्त स्रोतों के अभाव में अनेक प्रदेशों में इस नीति का क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाया है। यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तंबाकू या धूम्रपान से होने वाली बीमारियों का प्रचार किया गया है कि इससे कैंसर हो सकता है, और यह भी कहा गया है कि सिगरेटों के डिब्बों पर उचित स्थान पर यह लिखा जाए कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भी तंबाकू का प्रयोग कम ना होकर बढ़ा है। हालांकि हमारी सरकार ने दूसरी सरकारों की तरह इसके मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की है। पिछले वर्षों में हेरोइन, हशिश, एलएसडी जैसे घातक नशीले पदार्थों का हमारे देश में प्रचलन एक नई बात है। नशीले पदार्थों के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति अब पर्याप्त गंभीर रूप धारण कर चुकी है। हमारे समाज में नशीले पदार्थों के सेवन में यदि वृद्धि कई कारणों से है, जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया, ग्रामीणों का शहरों की ओर रुझान, और इसके फलस्वरूप परिवार के गठन में आए परिवर्तन, आधुनिक जीवन के तनावों, सामाजिक मूल्यों में पड़ती हुई दरारों और सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों ने समस्या को संलिष्ट कर दिया है। अध्ययनों से पता चला है कि नशीले पदार्थों का प्रयोग मध्यम स्तर पर उच्च मध्यम स्तर तथा अत्यंत उच्च स्तर के आर्थिक संपन्न परिवारों के बच्चों द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग का कारण आधुनिकीकरण की ओर रुझान के रूप में देखा जा सकता है, या फिर जोखिम उठाने और सामान्य जिज्ञासा से उत्पन्न व्यवहार में देखा जा सकता है। इसका सेवन इसलिए भी बढ़ा है कि बच्चों पर माँ बाप का नियंत्रण शिथिल पड़ गया है। संयुक्त परिवारों का टूटना भी इसका आंशिक कारण है। जहां माता पिता दोनों कामकाजी हों, वहां भी बच्चों में नशाखोरी बढ़ती है। जहां माता पिता धूम्रपान करते और मदिरा सेवन करते हैं, वहां भी बच्चे में नशीले पदार्थों के सेवन की ओर रुझान देखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 464, समस्या की महनीयता, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। समाज कल्याण मंत्रालय के पास देश में नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वालों की कुल संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी विगत वर्षों में 31 शोध कार्य और अध्ययन हुए हैं जिन्होंने इस देश में नशाखोरी की समस्या पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्य करते हुए अनेक क्षेत्रों के लोगों का अत्यंत व्यापक अध्ययन किया है। इस संयुक्त प्रयास ने ये निष्कर्ष निकाले। नशीले पदार्थों का सेवन सभी धर्मों और जातियों के वर्गों में है और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष धर्म को मानने वाले इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं या फिर किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लोगों में इसका अधिक प्रचलन है। नशाखोरों में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे या साक्षर थे। जिज्ञासा, प्रयोगात्मकता, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं ही नशाखोरी में सहयोगी तत्व थे। 16 और 35 वर्ष के बीच के लोगों में नशाखोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा थी। नशीले पदार्थों में तस्कर, व्यापारी, दुकानदार और पान वाले इसकी आपूर्ति में विशेष सहायक होते थे। नशाखोरी रोकने में वैवाहिक जीवन की भूमिका महत्व रखती प्रतीत नहीं होती थी। कम आय वाले वर्ग के लोग नशाखोरी के अधिक शिकार थे। अकेले रहने से नशाखोर होना आवश्यक बात न थी। नशा करने वालों में अधिक संख्या उन लोगों की थी जो बेकार, मजदूर, परिवहन में कार्यरत था, विद्यार्थी थे। सबसे अधिक सेवन के योग्य मादक द्रव्यों में प्रथम स्थान था और उनका बाद हेरोइन का द्वितीय स्थान था। अब नशीले पदार्थों का सेवन केवल धनाढ्यों और अधिक संपन्न लोगों तक ही केंद्रित नहीं है। नशाखोरों की अधिकांश संख्या जो इलाज के लिए आती है वे झुग्गी झोपड़ वाले श्रमिक, परिवहन चालक, छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक और छकड़ा चालक आदि शामिल हैं। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर विद्यालयों के विद्यार्थियों की भी बहुत बड़ी संख्या नशाखोरी का शिकार है। हमारे जैसे एक विकासशील देश के लिए जो अपनी निर्धनता, बीमारी और अभावग्रस्तता जैसी मौलिक समस्याओं के समाधान में जुटा हुआ है, इस प्रकार की नशाखोरी के सामाजिक परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। समस्या को सुलझाने के उपाय, मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम। यह समस्या इतनी संगीन है कि अब यह समाज कल्याण का एक प्रमुख विषय हो गई है। नशाखोरी की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए किया गया कोई भी उपाय अनेक मुखी होना चाहिए। इसमें समस्या का पता लगाना, उपचार सेवाएं देना, इलाज करना, जन जागरण, शिक्षा और पुनर्वास के साथ अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई पर नियंत्रण करना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 465, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या के अनेक पक्षों के कई मंत्रालय विभाग जुड़े हुए हैं। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग 1985 के नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नशाखोरों की चिकित्सा के लिए प्रयासशील है। सरकारी अदारे के माध्यम से नशाखोरी के विरुद्ध प्रचार के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय उत्तरदायी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा, युवा कार्यों और खेलों के प्रभाग भी इस समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं। नशाखोरों के कल्याणार्थ किए जाने वाले कार्यक्रम, वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द एडिक्ट। समाज कल्याण मंत्रालय समाज में व्याप्त नशाखोरी के शैक्षणिक और समाज कल्याण संबंधी विषयों की छानबीन कर रहा है। नशाखोरी को रोकने के लिए मंत्रालय ने अनेक संयुक्त पक्ष उठाए हैं, जैसे जागृत पैदा करना, नशाखोरों को पहचानना, उनकी चिकित्सा करना और उनका पुनर्वास करना। यह कार्य स्वैच्छिक संगठनों एवं स्वयं लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से किया जा रहा है। इन संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में 74 ऐसी स्वैच्छिक कार्यशील संस्थाएं स्थापित हुई हैं जो ऐसी स्थितियां पैदा करने का उत्तरदायित्व लेती हैं जिससे समाज में नशाखोर व्यक्ति नशे से रहित जीवन व्यतीत करने के योग्य हो सके। नई दिल्ली में 1985-86 में आरंभ किए गए 7 परामर्शन केंद्रों से 1987-88 में इनकी संख्या बढ़कर 86 तक हो गई है। इसी तरह दिल्ली में 1986-87 में स्थापित जन समुदाय मूलक नशाखोरी विरोधी एक खुला केंद्र, 1987-88 में इन केंद्रों की संख्या 24 हो गई है। साथ ही साथ समाज सुरक्षा की राष्ट्रीय संख्या के माध्यम से मंत्रालय के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी आदरों की जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण की नियमित योजना का शुभारंभ किया गया है। 1987-88 में इस संस्था के द्वारा सारे देश में नशाखोरी की रोकथाम के लिए 30 प्रशिक्षण शिविरों और 4 प्रखंडीय वर्कशॉपों की आयोजन किया गया है। रोमन का नंबर 2, जन जागृति और रोकथाम की शिक्षा, पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन एजुकेशन। एक व्यक्ति पर नशीले पदार्थों के सेवन के कुप्रभावों के विषय में भारी मात्रा में अज्ञानता के कारण और परिवार तथा समाज पर इसके इन कुप्रभावों की सही जानकारी न होने के कारण समाज कल्याण मंत्रालय ने औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों के जन जागृत का निर्माण करने और नशाखोरी की रोकथाम की शिक्षा देने के लिए अनेक पग उठाए हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है ताकि माता पिता, अध्यापकों और विचारक नेताओं के लिए आवश्यक जानकारी मुहैया करवाई जाए। आधिकारिक और गैर आधिकारिक संस्थाओं के माध्यम से फिल्म दिखाई जाती है। बहुत सी स्वैच्छिक संस्थाओं को केंद्रीय प्रखंडीय योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वैच्छिक संस्थाओं को यह सहायता मद्य निषेध, अल्कोहल पीने वाले, मादक द्रव्यों के व्यसनी तथा सामाजिक अपराधों के शिकार मनुष्यों को शिक्षा तथा सलाह देने और उनके पुनर्वास के लिए दी जाती है। असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एजुकेशन वर्क फॉर एल्कोहलिक्स, ड्रग एडिक्ट्स एंड अदर विक्टिम्स ऑफ सोशल क्राइम, ताकि वे संस्थाएं अपने क्षेत्रों में जाकर मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की शिक्षा दे सकें। स्वैच्छिक संस्थाओं को नुक्कड़ नाटकों के आयोजनों, पेंटोमाइज प्रदर्शनों तथा घर घर बातचीत के माध्यमों से विशिष्ट वर्गों के साथ विचार विनिमय की तकनीकों का उपयोग करने के लिए उत्साहित किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में तथा प्रभावित क्षेत्रों में युवा वर्ग को शिक्षित करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें निबंध लेखन, वाद विवाद, पोस्टर प्रतिस्पर्धा, फिल्म शो तथा प्रदर्शनियां आदि को प्रोत्साहित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रचार उतनी मात्रा में ही किया जाए जिससे नशीले पदार्थों के विषय में लोगों की जिज्ञासा, प्रायोगिकरण या सस्ते धन के प्रति लालसा जागृत न हो सके। पृष्ठ संख्या 466, रोमन का नंबर 3, सामुदायिक स्तर पर नशाबंदी कैंप आयोजित किए जाएं, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डी एडिक्शन कैंप्स एट कम्युनिटी लेवल। नशाखोरी एक मानसिक, सामाजिक और चिकित्सा शास्त्र की समस्या है। इसे नशाखोर के जीवन की घटनाओं की संपूर्ण रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उपचार के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के पीछे मूलभूत उद्देश्य यह है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि स्थानीय स्तर पर समाज मूलभूत कल्याण संगठनों के द्वारा परिवार और समुदाय या वर्ग विशेष को दी जाने वाली सहायता अधिकतम रूप में हो। अपनाई गई प्रणाली का लक्ष्य परिवार को सुदृढ़ करना और समाज सेवकों के माध्यम से सहयोगियों की भावनाओं को बढ़ाना है। इत्यादर्थ नशाखोरों की समस्या को समझा बुझाकर इस आदत को छुड़वाकर नशाखोरी से रहित जीवन बिताने के लिए कटिबद्ध करना है। इस दिशा में मद्यपान निषेध कैंपों को नियमित रूप से सामुदायिक स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। इसके आयोजन में स्वैच्छिक संगठन सहायता प्रदान करते हैं। अपनी अपनी बस्तियों में रहने वाले नशाखोरों को परामर्श तथा उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं। रोमन का नंबर 4, परिवार और समुदाय की सक्रिय रूप से सहभागिता की नीति, स्ट्रेटजी ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी। नशीले पदार्थों के सेवन के रोकथाम की पूर्ण नीति अंतरानुशासिक परस्पर संबद्ध और क्रियान्वित कार्य पद्धति पर आधारित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 से जन कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक सर्वशक्ति संपन्न समिति कार्यशील है, जिसमें भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अनेक प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। समस्त कार्यप्रणाली इस तर्क पर आश्रित है कि नशीले पदार्थों के कुसेवन को परिवार तथा जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। जो स्वैच्छिक संस्थाएं इसमें समुदाय या वर्ग की अंतरात्मा और चिंता का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पृष्ठ संख्या 467, रोमन का नंबर 5, कठोर वैधानिक दंड, स्ट्रेनेंथ लेजिस्लेशन। नशीले पदार्थों की तस्करी आदि के सम्यक रोकथाम के लिए सरकार ने दंड संहिता में कठोर कानूनों की स्थिति का सामना करने के लिए पारित किया है। ये हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसमें 1989 में कुछ संशोधन किए गए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैफिक एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, इन कानूनों के अंतर्गत भारी दंड का प्रावधान है। जो भी इन कानूनों, नियमों, आदेशों या शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसे कम से कम 10 वर्ष की, जो बढ़कर 20 वर्ष भी हो जाती है, की सजा की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसे 1,00,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा सकता है। न्यायालय चाहे तो निम्नलिखित चार्ट में प्रदर्शित अपराधों के कारण जुर्माने की रकम को 2,00,000 रुपए से बढ़ा भी सकती है। ए प्रोड्यूसेस ओमिट्स टू वेयरहाउस आर रिमूव्स आर डज एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउस कलेक्टिवेट्स एनी आर गैदर्स एनी पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चरर्स कलेक्टिव्स बीइंग अ लाइसेंस्ड कलेक्टिव आर ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बलेज्ड ऑन इलीगली डिस्पोज्ड प्रोसेसेस ट्रांसपोर्ट्स सेल्स परचेजेज यूजेज इम्पोर्ट्स इंटर स्टेट्स एक्सपोर्ट इंटर स्टेट इम्पोर्ट इंटू आ एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया आर ट्रांसिप्स पॉपी एस्ट्रा कोका प्लांट कोका लिप्स प्रिपेयर्ड ओपियम ओपियम पॉपी ओपियम पॉपी एस्ट्रा कोका प्लांट एंड लीफ प्रिपेयर्ड ओपियम ओपियन पॉपी एंड ओपियम कैनविस अदर देन गांजा मैन्युफैक्चर्ड ड्रग और प्रिपरेशन कंटेनिंग एनी ऑफ इट्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एनी नारकोटिक ड्रग्स ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। बी निवारक नज़रबंदी कानून 1989, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1989, मादक द्रव्यों का व्यापार एवं तस्करी करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नया निवारक नज़रबंदी कानून द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैफिक इनटू अ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के नाम से 1988 में पारित किया गया। पृष्ठ संख्या 468। इस नए कानून में व्यापक क्षेत्र तथा मादक द्रव्यों का उत्पादन, निर्माण, विक्रय, क्रय, भंडारण, चोरी एवं उपभोग से आच्छादित किया गया है। नज़रबंदी की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है, जो गंभीर मामलों में 2 वर्ष भी हो सकती है। कानून की धारा 10 के अधीन किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक के लिए परामर्श बोर्ड की राय के बिना नज़रबंद किया जा सकता है। भूमि क्षेत्र जो गुजरात, पंजाब, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के 100 किलोमीटर चौड़ा है, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की भारत सीमा, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड में भारत बर्मा सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा एवं भारत भूटान सीमा को गैर कानूनी व्यापार के लिए उच्च समुदाय क्षेत्र परिभाषित किया गया है। सी, नारकोटिक मादक द्रव्य साइकोट्रॉपिक पदार्थ कानून 1987 में संशोधन, अमेंडमेंट टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987। नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को जनवरी 1989 में पुनः संशोधित किया गया। इस नए कानून में गैर सरकारी व्यापार एवं मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपायों में से संबंधित किए गए व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई है। इस कानून द्वारा कुछ एक नियंत्रित पदार्थों को, जिनका प्रयोग संवेदन मद्दक औषधियों एवं मनोसांत्वना पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, कानून की सीमा में सम्मिलित कर उनमें उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें पकड़ी गई औषधियों का सुनवाई पूर्व निपटान करने, निर्दिष्ट अपराधों में दूसरी बार सजा पर मृत्यु दंड, संपत्ति को जब्त करने तथा अपराधों को संज्ञानित एवं गैर जमानती बनाने के बारे में व्यवस्था है। उपरोक्त दंड निम्नलिखित धाराओं के लिए भी दिए जा सकते हैं। रोमन का नंबर 1, किसी व्यापार को करना अथवा इसे नियंत्रित करना जिसके द्वारा भारत के बाहर से किसी नारकोटिक औषधि अथवा साइकोट्रॉपिक पदार्थ को प्राप्त करके भारत के बाहर किसी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति अथवा ऐसे किसी अनुमति के उल्लंघन में सप्लाई करना। रोमन का नंबर 2, इस कानून के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी मकान, कमरे, स्थान, पशु वाहन जिसका वह स्वामी है अथवा जो उसके पास है के प्रयोग की जानबूझकर अनुमति देना। रोमन का नंबर 3, इस कानून के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करना अथवा अपराध करवाने का प्रयास करना एवं ऐसा प्रयास करते समय अपराध किए जाने में कोई कार्य करता है। रोमन का नंबर 4, इस कानून के अधीन किसी भी अपराध को कराने में सहायता देना अथवा आपराधिक षड्यंत्र में भाग लेना, चाहे ऐसी सहायता या षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अपराध हुआ हो अथवा न हुआ हो।